ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं में वाराणसी में आधारभूत ढांचे का विकास और सड़क संपर्क शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, शहर के भिखारीपुर और महुआडी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 980 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक हाईवे अंडरपास टनल का शिलान्यास करेंगे। राज्य में विद्युत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के क्रम में प्रधानमंत्री वाराणसी संभाग के जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर जिलों के 1,045 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले दो 400 केवी और एक 220 केवी विद्युत उपकेंद्र और संबंधित पार्श्व लाइनों का उद्घाटन करेंगे। वे वाराणसी के चौकाघाट में 220 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र, गाजीपुर में 132 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र और 775 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाराणसी शहर की विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। वे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 77 प्राथमिक विद्यालय भवनों के नवीनीकरण और वाराणसी के चोलापुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के नए भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। शहर में खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री उदय प्रताप कॉलेज में फ्लडलाइट्स और दर्शक दीर्घा युक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ और शिवपुर में एक मिनी स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर शास्त्री घाट के पुनर्विकास और जल जीवन मिशन के तहत 345 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 130 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 70 वर्ष से अधिक के आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी सौंपेंगे। वे तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दूध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक राशि का बोनस भी हस्तांतरित करेंगे। बाद में श्री मोदी मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे और ईसागढ़ में गुरूजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए की विशेष अदालत ने 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में तहव्वुर राणा को पेश कर एनआईए ने उसकी 20 दिन की हिरासत मांगी थी। तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान से राणा को दिल्ली लेकर आई। राणा को विमान से उतरते ही हवाई अड्डे पर मौजूद एनआईए टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। केंद्र सरकार ने तहव्वुर राणा मामले में अधिवक्ता नरेंद्र मान को विशेष सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि नरेंद्र मान को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने कल कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य षड्यंत्रकारी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित किया गया है, लेकिन उसने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी मूल के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है और उसे कनाडाई नागरिक ही माना जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शिवानंद अधिकारी को 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 क्रिकेट में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 17 ओवर में और 5 गेंदों में 4 विकेट पर 169 रन बनाए। आईपीएल में आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।